प्रश्न ये है कि हम आध्यात्मिकता की तरफ हम आकर्षित हुए थे भौतिक प्रॉब्लम से घबराकर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, ही सोच रहे थे क्या करें, तो किसी ने बोला कि आध्यात्मिकता अपनाओ तो वो प्रॉब्लम से आप बच जाओगे, जैसे कि हमने आज बात भी किया। लेकिन हम आध्यात्मिकता में जाते हैं, भक्ति करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कहावत है ना कि वो कुएं से निकले खाई में गिर गए नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक जगह से बचे और दूसरी जगह में आके फंस गए हम लोग। क्या हुआ? अच्छा, कोई नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वहां से निकले यहाँ फंस गए, हम वही के वही। हाँ, पहले भी प्रॉब्लम्स थी, अभी भी प्रॉब्लम्स है, तो इसको कैसे समझा जाए? जो हम भौतिक समस्याओं को का सामना कर रहे हैं, वो भौतिक समस्याओं का सामना करने से हमें कुछ शाश्वत लाभ नहीं मिलने वाला है ना। शरीर नश्वर है, जैसे ये शरीर खत्म होगा, हमने जितना भी प्रयास किया उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। जितना ज्ञान लिया, जितना धन कमाया, सारा साथ के साथ खत्म। तो चलो, उससे बचने के लिए हम भक्ति शुरू की, लेकिन भक्ति में भी हमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार भक्तों के साथ ही मनमुटाव हो जाता है, नहीं? भक्ति, जो भक्त है वो भी बूढ़ा हो रहा है और जो भक्त नहीं है वो भी बूढ़ा हो रहा है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क ये है कि जो अभक्त, जो बूढ़ा हो रहा है, वो शरीर छोड़कर दोबारा जन्म लेगा, लेकिन भक्त जो है वो शरीर छोड़कर दोबारा जन्म नहीं लेगा। जो भक्त है वो जब ये शरीर छोड़ दिया, पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। जैसे ब्रह्मांड पुराण में भी बोला है कि रथे चागमनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर आपने जगन्नाथ जी को रथ पे विराजमान देख लिया, जब जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा या रथ यात्रा जाती है, तो आपने उनके दर्शन कर लिए, रथ खींच लिया, तो दोबारा जन्म नहीं होगा, है ना। अभक्त तो नहीं कर रहा ये काम, है ना। तो जो रस्सी खींच रहा है, जो भगवान की, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के साथ चल रहा है, तो क्या वो बूढ़ा नहीं होगा? वो बूढ़ा होगा, लेकिन तो क्या उसकी मृत्यु नहीं होगी? हाँ, उसकी मृत्यु भी होगी, लेकिन मृत्यु होने के बाद में वो दूसरा शरीर नहीं लेगा, है ना। जो अभक्त है वो इस मृत्यु चक्कर में फंसा रहेगा, बार बार जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार मरता रहेगा। लेकिन जो भक्त है वो एक ही बार मरेगा, और वो भी इसलिए शरीर छोड़ेगा कि अभी भगवत धाम जाने के लिए, है ना। इसका एक और पहलू भी है कि जब हम लोग भक्ति में जुड़ते हैं, बहुत सारे भक्तों के साथ मिलकर चलते हैं, तो उसमें भी हमें कई समस्याओं का सामना पड़ता है। हर भक्त के साथ हमारा मन नहीं मिलता, है ना। कभी किसी भक्त की कोई बात अच्छी नहीं लगती, है ना। ये भगवान का विशेष अरेंजमेंट है, ये भगवान की विशेष कृपा है। हमारे लिए भगवान ने ऐसी परिस्थिति बनाई है, जैसे कि एक राजा है, राजा के लिए पूरी प्रजा उसके संतान के समान है, लेकिन जो उसका अपना बच्चा है उसका विशेष ध्यान रखेगा नहीं रखेगा वो, है ना। इसी तरह से सब लोग भगवान की संतान हैं, लेकिन जो भक्त हैं भगवान उनका विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अभक्त और भक्त दोनों एक ही डंडे से हांके जा रहे हैं, है ना। जो भक्त हैं भगवान उनका विशेष ध्यान रखते हैं, और भक्त के जीवन में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भक्त अगर आपस में कुछ भी बात कर रहे हैं या उनके साथ कुछ भी आपस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं कि भगवान उनको मौका दे रहे हैं कि कि विषम परिस्थितियों में भी आपस में मिलके कैसे रहा जाए, ये सीखने का भगवान मौका देते हैं, है ना। तो अगर आप भक्त बन गए, अगर भक्त बनने के बाद आपको कुछ समस्याएं आती हैं भक्तों के साथ में व्यवहार करने में, तो आप समझिए कि भगवान ने आपको विशेष सुविधा प्रदान की है कि आप दूसरे भक्तों के साथ मिलके कैसे रहना है वो सीख पाओ। जैसे एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे नियम कानून होते हैं, है ना। जो नए जो सदस्य बनते हैं, जैसे कभी उस घर में बहू आई शादी के बाद में, तो उसके अपने सपने होते हैं नहीं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन संयुक्त परिवार में बहुत सारे बंधन होते हैं, वो बंधन को मानना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है। अगर कोई उसको मान ले, अगर परिवार के अनुसार अगर चले, तो पूरे फैमिली में उसका यश फैलता है, बोलते हैं कि देखो उसकी बहू तो बहुत अच्छी आएगी, नहीं। अगर वो कहना नहीं माने तो फैमिली भी टूट जाती है और उसको यश भी नहीं मिलता, लोग बोलते हैं यार बहुत तेज है वो। उसी प्रकार ये जो भक्तों का जो ये संस्था है, इस्कॉन है, भक्तों का जो परिवार है, ये संयुक्त परिवार की तरह है। जब नए भक्त जुड़ते हैं तो उनके बहुत सारे बहुत उत्साह होता है और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे समझ में आता है कि कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, आपके ऊपर वरिष्ठ भक्त हैं, उनके उनका उनका कहना सुनना पड़ेगा, उनके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हम उनके अनुसार नहीं चलेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। सो ये मौका है, ये सुविधा है। भक्तों के संग में रहना आसान नहीं होता, है ना। जैसे संयुक्त परिवार में रहना आसान नहीं है, वैसे भक्तों के साथ रहना भी आसान नहीं है, है ना। सो लेकिन अगर हम विनम्र रहेंगे, अगर हम सामने वाले को सही और अपने आप को गलत समझने का प्रयास करेंगे, हाँ, हम ये सोचेंगे कि वो एक सामने वाला भक्त है, हो सकता है उसकी बात सही हो सकता है मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो अगर हम इस दृष्टिकोण से, इस मानसिकता से अगर हम भक्तों के समाज में इकट्ठे रहेंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे की बात को सहने का प्रयास करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, धीरे धीरे आपस में एक एडजस्टमेंट बैठ जाएगी। जैसे जब नई नई शादी होती है, हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन साथ रहते रहते धीरे धीरे एक दूसरे के स्वभाव को समझ जाते हैं, एक दूसरे के कि उसको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है समझ के अपने आप को ढाल लेते हैं। स्त्रियां भी ढालती हैं, पुरुष भी ढालते हैं, नहीं। सो जब एक दूसरे के अनुसार अपने आप को ढाल लें, तो फिर जो जीवन है वो सरलता से चलना शुरू हो जाता है, नहीं। तो उसी प्रकार अगर हम जब भक्तों के साथ रहते हैं, हम देखें कि दूसरे भक्तों को क्या अच्छा लग रहा है, उनको क्या बुरा लग रहा है, जो बुरा लगता है उसको ना करें, जो अच्छा लगता है उसको करने का प्रयास करें, अपने में बदलाव लाएं, ताकि हम भक्तों के संग में रहने के योग्य बन सकें। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी चलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी भक्तों के साथ में हम कभी सपोज यात्रा पे गए, सारे भक्त हरिनाम कर रहे हैं, हम अलग से बह के चाय पी रहे हैं, सो वो अच्छी बात नहीं है, उससे दूसरे देखने वाले लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता है। सपोज 50 लोग हैं, उसमें से चलो 40 लोग तो चाय पीते नहीं, वो समझ चुके हैं चाय नहीं पीनी, 10 लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं चाय पीनी चाहिए, पीऊं ना पीऊं, है ना। सो वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, एक चला गया चाय पीने के लिए, तो बाकी लोगों को भी उसका मन ललचा जाएगा, बोलेगा यार देखो उसने भी, मैं भी जाके पी लेता हूँ, है ना। सो अगर हम भक्तों के साथ रह रहे हैं, हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं तो अपने घर में जैसे भी चाहता है, मेरा मन चाहता है मैं वैसे रहता हूँ, भक्तों के साथ में मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हम भक्तों के साथ अगर रहने की कोशिश करेंगे तो हमें उनके अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम अभी हम 20 तारीख अगले संडे हम लोग शोभा यात्रा में जाएंगे, आप सब लोग साथ में चलेंगे। सो आप दूसरों के अनुसार चलने का प्रयास करें, दूसरों की सुविधाओं के बारे में ध्यान रखें, तो अपने आप वो यात्रा आपके लिए भी अच्छी हो जाएगी और दूसरे भक्तों के लिए भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप बोले मुझे सीट नहीं मिली, मुझे खाना नहीं मिला, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो अपने आप ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, नहीं? सो ये अवसर है भक्तों, हमें प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ रहे, है ना। इससे हमें कुछ असुविधा होगी लेकिन वो असुविधा हम सहते रहेंगे, धीरे धीरे उसको टॉलरेट करते रहेंगे तो वो हमें असुविधा लगना बंद हो जाएगा, फिर हम आराम से भक्तों के साथ में रह पाएंगे। और यही काम तो हमने भगवान के धाम जाके करना है, वहां कोई अकेले थोड़ा रहोगे आप टापू पे, एक टापू है वहां पे बस आप ही आप रह रहे हो, है ना। बहुत सारे भक्त हैं वहां पर और उन सब भक्तों के साथ में मिलके रहना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर मिलकर रहने की ट्रेनिंग अगर नहीं लोगे, सीखोगे नहीं दूसरे भक्तों के साथ मिलकर कैसे रहना है, ऊपर नहीं जा पाओगे भगवान के धाम। भगवान बोलेंगे यार यहाँ पे कुंठ है, वहां वैकुंठ है, इसको ले गया तो वहां भी कुंठा हो जाएगी। सो भगवान तब तक नहीं लेके जाएंगे जब तक भगवान को भरोसा नहीं हो कि तुम वहां जाकर शरारत नहीं करोगे, परेशानियां नहीं खड़ी करोगे। सो हम भगवान को यह भरोसा दिला सकते हैं भक्तों के साथ अधिक से अधिक समय बिताकर और एक दूसरे से समस्याओं को हटाकर, समस्याओं को सहकर भक्तों के साथ में रहते हुए हम भगवान को दिखा सकते हैं, देखो हम प्रयास कर रहे हैं आपके यहाँ आने के लिए, आप भी हमें और ज्यादा कृपा दो। आप कृपा कर ही रहे हो, मुझे और कृपा करो, मैं जल्दी आपके धाम आना चाहता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण।